ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळयाडल पुराण की 16वां भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
एपिसोड 16। पिछली कड़ी में हमने देखा कि एक वाद विवाद में अपने अधूरे ज्ञान की वजह से नकीरन फंस गए। तमिल व्याकरण में ऐसा एक प्रयोग है जिसमें हम विशेषणों को थोड़ा ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। इस प्रयोग को अतिशयोक्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदी में कहा करते हैं ना, तुम कहो तो आसमान से तारे तोड़ सकता हूँ। उसी तरह तमिल में भी है। नकीरन ने घमंड या लापरवाही के कारण इसे भूलकर कविता में आपत्ति उठाई। भगवान के दर्शन के पश्चात भी उसने अपनी गलती को नहीं समझा। खैर, परिणाम यह हुआ कि स्वर्ण कमल के तालाब में जा गिरे। इस दृश्य को देखकर राजा और अन्य आमंत्रित सज्जन बहुत ही घबरा गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान तो कृपालु हैं, उन्होंने नकीरन को बचाया। नकीरन बाहर आए और उसने शिवजी से क्षमा मांगी। धर्मी को समझ में नहीं आया कि उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी भी या नहीं। उसे डर लगने लगा कि उसका विवाह क्या एक सपना ही रह जाएगा। वह धीरे से राजा के पास जाने लगा। राजा समझ गया था। उसने धर्मी को स्वर्ण मुद्राएं दे दी। धर्मी ने मंदिर जाकर भगवान का गुण गाया और अपना आभार प्रकट किया। थोड़े ही दिनों में उसका विवाह हो गया और तमिल भाषा में पांडित्य भी मिल गया। इधर नकीरन ने शिवजी पर बहुत सारे पद्य लिखे, अद्भुत कवि बन गए। अब शिवजी ने सोचा कि उसे तमिल भाषा में जिस ज्ञान की कमी थी उसे दूर करना आवश्यक है। शिव ने मुनि अगस्त्य को बुलाकर नकीरन को सिखाने का कार्य सौंप दिया। इस घटना के पश्चात कवियों का समूह एक और बड़े काम में लगे। पहले और दूसरे संगम के तमिल पद्यों और व्याकरण को विधिवत लिखा। परंतु जैसे जैसे काम करने लगे, हर एक कवि को लगा कि उसका काम ही कठिन है और उसकी तमिल ही सबसे अच्छी है। स्वाभिमान अभिमान में, अभिमान घमंड में और घमंड द्वेष में बदल गया। आपस में झगड़ा भी करने लगे। शिवजी इन लोगों को एक पाठ पढ़ाना चाहा। उन्होंने कहा कि आपस में लड़ना ठीक नहीं है, यह बचपना है। नकीरन ने पूछा, तो क्या करें भगवान? हम लोगों ने इतना लिखा है, इनमें से कौन कौन से अच्छे हैं? इसे परखने वाला कोई है? भगवान ने कहा, क्यों नहीं, इसी शहर में रुद्र शर्मा नामक एक बालक है। बस 5 वर्ष की आयु का है, जन्म से मूक है। वह तुम्हारे सभी कविताओं को सुनकर परखेगा। जिन कविताओं को सुनकर उसका चेहरा प्रसन्न होता, मान लो वे ही कविताएं श्रेष्ठ हैं। कवियों को समझ में नहीं आया, परंतु भगवान के कहने पर मान गए। बालक ने सब कविताएं सुनी और उनकी प्रसन्न मुद्रा से अच्छी कविताओं की परख हुई। इस तरह शिवजी ने एक छोटे से बालक को सामने लाकर बड़े बड़े कवियों के गर्व का भंग किया। वह बालक और कोई नहीं था, स्वयं भगवान शिव ही थे। बच्चों, इसके बाद दूसरा कुलशेखर पांडियन की राज बहुत ही अच्छा चल रहा था। वह स्वयं बुद्धिमान और पंडित था। उसने तमिल साहित्य के उद्धार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन थोड़ा घमंडी था। उसके दरबार में कोई भी कवि आता तो वह कभी उसकी प्रशंसा न करता था। जब भी कोई कविता पढ़ने आता तब वह अपने ही कुछ मित्रों से यह कहलवाता था कि सबसे श्रेष्ठ कवि राजा ही है। एक बार इडेक्काडन नामक कवि दरबार आया था। उसने मधुर और भावपूर्ण कंठ में भगवान शिव की आराधना में एक कविता सुनाई। दरबार में सभी भावुक हो गए। राजा को भी लगा कि सच में वह कविता बहुत ही अच्छी थी। राजा की झूठी प्रशंसा करने वाले मित्र भी पहले चुप बैठे, फिर सामने आए और यह कहने लगे कि राजा की कविताओं के सामने और किसी की कविता की तुलना भी नहीं कर सकते। कवि इडेकादन बहुत ही दुखी हो गया और मंदिर जाकर बहुत रोने लगा। उसने तो भगवान के बारे में ही कविता लिखी थी। शिव जी ने सोचा कि अब राजा का गर्व भंग करना ही चाहिए। इडेकादन प्रार्थना करने के बाद घर चला गया। रातों रात शिव जी अपनी देवी मीनाक्षी के साथ मदुरई के उत्तर की ओर जाकर उधर एक छोटा मंदिर बनाकर बैठ गए। अगले दिन मदुरई के मंदिर से शिवलिंग और देवी की मूर्ति गायब हो गई थी। जो भक्त प्रातःकाल मंदिर गए, खाली गर्भगृह को देखकर हैरान हो गए। अकस्मात शहर के उत्तर भाग में नए मंदिर को देखकर अचंभित हो गए। राजा को यह सूचना दी गई कि मदुरई के मंदिर में शिवलिंग और देवी मीनाक्षी की मूर्तियां नहीं थी। उसे बहुत दुख हुआ। राजा नया मंदिर आया, भगवान से विनती की कि उसे यह तो पता चले कि ऐसे क्यों हुआ है। अशरीरी वाणी बोली, राजन यह ठीक है कि तुम बड़े विद्वान हो, लेकिन तुझ में नम्रता नहीं है। छोटे कवियों को भी सादर सम्मान देना एक राजा का कर्तव्य है, नहीं तो भाषा की प्रगति ही नहीं हो सकती। इडेकादन ने तो हमारे गुण गाए थे, तुमने तो मेरा भी तिरस्कार किया था। मैं उस जगह नहीं रहना चाहता जहाँ हमारा अपमान हो। आज के बाद यह मंदिर उत्तर आलवाई कहलाया जाएगा। राजा को अपनी भूल पहचान हुई और वह बहुत शर्मिंदा हुए। भगवान से बहुत क्षमा प्रार्थना की। वह कहने लगा, भगवान मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना बड़ा मंदिर आपके बिना सुनसान है, देवी भी नहीं है। अगर आप नहीं रहे तो मैं भी वापस नहीं आऊँगा। शिव जी राजा की भक्ति से आनंदित हुए और वापस मदुरई को आने की सहमति दे दी। इस तरह भगवान की और एक लीला संपन्न हुई। बच्चों अब शिव जी की और एक लीला सुनिए। कैलाश में शिव और देवी पार्वती वेदों की चर्चा कर रहे थे। कुछ ही देर में देवी पार्वती थक गई और उनका ध्यान भटक गया। शिव जी क्रोधित हो गए और पार्वती को शाप दे दिया। उन्होंने कहा, देवी आपने वेदों का अपमान किया, आपको एक मछुए के घर में जन्म लेना होगा। देवी पार्वती बहुत पछताई और क्षमा मांगी। शिव जी ने कहा कि वे स्वयं आकर उनसे विवाह करेंगे। पार्वती जी ने पूछा, मछुआरों तो सागर के किनारे में रहते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? शिव जी ने कहा, पांड्य देश के पूर्व कन्याकुमारी के पास ही आपका जन्म होगा। पिता का क्रोध और माता की दशा को देखकर गणेश और कार्तिकेय भी दुखी हुए और वे भी गुस्से में आकर वेदों को सागर में फेंक दिया। भगवान यह अपमान सह नहीं पाए और कार्तिकेय से कहा कि तूम समय आने पर मूक बालक के रूप में दक्षिण भारत में जन्म लोगे। गणेश जी से कहा, वैसे भी तुम्हें हाथी का मुंह और इतना बड़ा पेट है और तुम तो अपने अनुज को रोक नहीं पाए, इसलिए तुम्हारा चाल सर्वदा मंद गति से ही होगा। शिव जी नंदी देव को बुलाया और उनसे कहा, आपने क्यों बच्चों को अंदर आने दिया, यह गलत है। नंदी देव ने कहा कि वे तो उनके ही पुत्र थे और उन्हें कैसे रोके। शिव जी ने नहीं माना और उन्हें भी शाप दी कि वे एक मकर मछली के रूप धारण कर वेदों को ढूंढे। देवी पार्वती मछुए के घर में 3 महीने की शिशु के रूप में पाई गई। वह मछुआ सब मछुआरों का नेता था। वह बहुत ही खुश हुआ और उसकी पत्नी माँ की हैसियत से उसे पालने लगी। मीनाक्षी देवी सुंदर और सुशील थी। उधर सागर में नंदी देव एक बहुत बड़ा मगर मछली बन गया और वेदों को ढूंढ निकाल कर सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। शिव जी एक नौजवान मछुए के रूप में आए। गांव के लोग उससे आकर्षित हो गए। जवान मछुए ने अपना नाम सुंदर बताया। मीनाक्षी को देखकर उससे विवाह करना चाहा। सुंदर मीनाक्षी के पिताजी के पास गए और विवाह के लिए अनुमति मांगी। नेता ने कहा, एक बहुत ही बड़ा मकर मछली हमें उपद्रव दे रहा है, अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो। शिवजी भी यही तो चाहते थे, और तो और सागर में नंदी देव भी इसी की प्रतीक्षा में थे ना। ये सब भगवान का पूर्व नियोजित नाटक ही तो था। जब सुंदर सागर तट पर आए, तब नंदी देव वेदों के साथ स्वयं अपने को सुंदर के पास सौंप दिया। एक हाथ में मगर मछली को उठाते हुए सुंदर नेता के पास गया और मीनाक्षी का हाथ मांगा। नेता और गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और सुंदर की जय जयकार की। सुंदर और मीनाक्षी दोनों का विवाह संपन्न हुआ। तब सुंदर ने अपने वास्तविक वृषभारूढ़ पार्वती परमेश्वर रूप में प्रकट हुए और मछुआरों के नेता से कहा, राजन तुम पिछले जन्म में शिव भक्त थे और मीनाक्षी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे, इसलिए हमने यह नाटक रचाया। इसे सुनकर देवी पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखा। शिवजी बोले, हाँ देवी, आप तो वेद स्वरूपिणी हो, मैं कैसे आपको दंड दे सकता हूँ। मेरा भक्त मछुआ का जन्म लिया है और उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए ही हमने आपको शाप दिया। देखिए शाप भी कैसे वरदान हो जाता है। पार्वती ने पूछा, किंतु मेरा पुत्र कार्तिकेय का क्या होगा। शिवजी बोले, चिंता न करो देवी, कार्तिकेय तो मूक बालक बनकर जन्म लेगा, परंतु श्रेष्ठ कवि बनकर तमिल भाषा के लिए बहुत कुछ करने वाला है। देवी पार्वती को सांत्वना मिली। देवी पार्वती ने कहा, हाँ भगवान, यह जगह अति सुंदर है। ये समुन्दर की लहरें और पवन मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं। क्या हम और कुछ दिन यहीं रह सकते हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, देवी उत्तर कोश मंगई नाम से यह क्षेत्र प्रसिद्ध होगा और माणिक्य वाचकन नामक एक भक्त यहाँ आकर मेरा गुण गाएगा। हम यहाँ के मंदिर में विराजमान होंगे। बच्चों अगली कड़ी में मिलेंगे।